और श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया जो प्रवचन है उसकी चर्चा हम आज आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत ही मार्मिक मुद्दा श्रील प्रभुपाद अब उपस्थित कर रहे हैं, वो ये है। प्रभुपाद कहते हैं, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा हु हैज फुल फ्रीडम, वी टू हैव फुल फ्रीडम। ये थोड़ा सा सुनने में अलग लगता है। जैसे एक प्रवचन में सुन रहा था, प्रभुपाद जी कहते हैं हमें भगवान से प्रेम करने की सीखने की क्या आवश्यकता है। नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वो कहते हैं ये कोई पढ़ाने वाली ये सिखाने वाली बात है ही नहीं इसमें कुछ। और हम जो साधना करने की कोशिश करते हैं, साधना करने का प्रयास करते हैं, तो हमें लगता है कि ये एक नाम जप के लिए बैठो तो या तो नाम जप होता है, फिर उसमें कहते हैं कि प्रेम से करो, तो प्रेम कैसे लाया जाए। जैसे एक सर्वश्रुत इस्कॉन में काफी फैली हुई बात है ये, हम कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। तो हर सप्ताह आश्रम में एक छोटा सा ग्रुप हमारा हरिनाम के ऊपर चर्चा करते हैं हम हर संडे को। तो एक भक्त ने कहा कि ये वास्तविक सही है क्या। शुरू शुरू में हम कहते हैं कि चैंट एंड बी हैप्पी, तो मैंने कहा क्यों क्यों सही नहीं है। बोला नहीं, पहले पहले लगता था कि चैंट एंड बी हैप्पी, और पहले ये भी बताया गया था कि कोई रूल नहीं इसमें, नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। ये भी एक इंग्लिश वाक प्रचार है, हार्ड एंड फास्ट रूल्स। तो जयदेव महाराज ने कहा लेकिन सॉफ्ट एंड स्लो रूल्स आर देयर, भले हार्ड एंड फास्ट नहीं होंगे। तो उन्होंने समझाया था कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब है बाकी कर्मकांड, बाकी जो पुराणों में इतनी सारी चीजें बताई गई है जो कि शायद आत्म साक्षात्कार का तक आपको ले भी ना पहुंचे, मामूली दान पुण्य तीर्थ गए, कोई मंदिर में गए, कुछ पूजा की, आवश्यक नहीं है कि आप मंदिर से जब वापस आते हो तब आप ज्ञान से पूर्ण होकर आते हो, या थोड़ा सा भी लेश मात्र ज्ञान होता हो। उल्टा कभी कभी कोई कथा पढ़ के अगर मन में थोड़ी सी वासना है तो वो पढ़ के वासना और बढ़ जाती है। तो एक इंद्रद्युम्न महाराज ने, पिछली बार हम मायापुर यात्रा गए थे, उन्होंने थोड़ा सा स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने कभी प्रभुपाद से चैंट एंड बी हैप्पी नहीं सुना है। अब इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च जारी है कि वास्तविक प्रभुपाद ने किसी लेक्चर में कहा है इसे कि कभी कभी क्या होता है भक्त लोग आपस में ही कुछ फैला देते हैं कि नहीं, अरे बुक निकली थी हमारी चैंट एंड बी हैप्पी, ऐसे कोई बहुत गड़बड़ वाली बात नहीं है, वास्तविक चैंटिंग से हैप्पी हो सकता है। लेकिन महाराज ने कहा था कि प्रभुपाद का वास्तविक वाक्य जो है वो बार बार बताते थे, चैंट एंड योर लाइफ विल बी सबलाइम, नाम जप से आपके जीवन का शुद्धिकरण करो। तो उस दिन हमारी चर्चा का विषय यह था, आनंदी व्यक्ति और जिसका जीवन शुद्ध हो रहा है, उदात्त हो रहा है, श्रेष्ठ हो रहा है, ये दो नॉट नेसेसरली कंपैटिबल हैं। आप लोग यहां पे डॉक्टर हैं, किसी पेशेंट की अवस्था आपके अनुसार बहुत अच्छी हो रही है कि 10 दिन पहले जो था ये और आज देखो कितना उसमें अंतर हो गया है, बट द पर्सन कुड बी मिजरेबल। वो तो कह रहा है क्या डॉक्टर कब होगा ठीक, कब होगा ठीक, और आप कह रहे हैं कि अरे पता नहीं है आपको, आप किसमें से गुजरे हो। तो डॉक्टर को मालूम है कि इसकी अवस्था क्या थी और आज दवा का असर हो रहा है, भले थोड़ा बहुत यहां वहां कुछ होता होगा, लेकिन पेशेंट जो है वो उतावला होता है कि नहीं मैं बाहर कब निकलूंगा, मैं स्विमिंग कब जाऊंगा, मैं रनिंग कब जाऊंगा, ऑफिस कब जाऊंगा। आपने कहा रुको बहुत समय है अभी तक। तो सब्लिमेशन, जीवन को श्रेष्ठ बनाना, शुद्ध बनाना, ये तो नाम जप के पहले चरण से होता है। शुद्धिकरण के लिए आपका शुद्धिकरण होने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी अवस्था में नाम जप ले सकते हैं। अहो बत श्वपचतो नाम गर्यान या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। एक श्वपच, श्व यानी कुत्ता, कुत्ता स्वर उस प्रकार के प्राणी, पच उनको खाने वाला, अहो बत श्वपचते नाम गर्यान, या अगर श्वपच भी आपका नाम लेता है, तेपुष तपस्त जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर नाम गणंती ये थे। तो समझ लेना चाहिए कि उसने बाकी सब कर लिया है, तेपु तप सस्नु तीर्थाटन तपस्या यज्ञ याग सभी पवित्र जल में स्नान। तो सब्लिमेशन, जीवन को श्रेष्ठ बनाना, ये तो गारंटी है। तो ये जो मुद्दा प्रभुपाद बता रहे हैं उसमें, पहले वो लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं, कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले से ही कृष्ण भक्त हो। और प्रभुपाद का एक ही ऐसा रॉक सॉलिड लॉजिक है, सोने के कण को क्या बनाना पड़ता है सोना बनने के लिए, कुछ नहीं, वो सोने का कण है पहले से ही। लेकिन सोना अगर प्राकृतिक अवस्था में देखा जाए तो मिट्टी और बाकी सारे इंप्यूरिटीज उसके ऊपर आ सकते हैं। जैसे पहले बचपन में मेरी धारणा ये थी कि सोने की खान मतलब ऐसा नीचे नीचे खोदते जाओ तो ऐसा प्योर सोना लगा होता है ऐसे, और उसको निकालते जाते हैं। और फिर जब एक बार एक किताब में पढ़ रहा था, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या है, सोना है या और कुछ है, काली मिट्टी होगी शायद, और उसको टन टन निकाल कर फिर उसका फिल्ट्रेशन करते हैं तब इतना इतना थोड़ा सोना मिलता है। अमेरिका में 1840 या 1860 के बीच में एक व्यक्ति के खेत में उसको एक सोने का ऐसा पत्थर मिला छोटा सा, और उससे जो एक पागलपन की लहर आ गई उस प्रदेश में, उसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड रश, सब लोग वहां पर जमीन ले रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, लोगों को लगा कि ये पूरा का पूरा प्रदेश ही, हजारों हजारों एकड़ की जमीन ये पूरी सोने से भरी है, और लोग अपना नौकरी धंधा सब छोड़कर वहां पर जा रहे हैं। आज जो कैलिफोर्निया का प्रदेश समझाता है वो उसी लिए वहां पर इतनी बस्ती बनी, इतने लोग आ गए। और उसका एनालिसिस किया जाए तो आज पता चलता है कि किसने पैसा बनाया वास्तविक, जिसने वो फावड़ा कुदल वो सब बेचा ना, जिसने वो सोना लाने के लिए औजार बेचे उसने बहुत पैसा बनाया, और वहां पर जमीन खरीद कर वहां से सोना लेकर हार्डली एक या दो व्यक्ति कुछ पैसे बनाए होंगे। और ये जो जीन्स पैंट करके आजकल फेमस हो गई है, तो उसका बनाने वाला आदमी, उसने सोचा कि इससे ज्यादा सोना ये कपड़े में है, तो वो कहता था कि मेरे कपड़े पहनकर आप दिन भर काम कर सकते हो खेत में, ये कभी फटेगा नहीं। और उसकी जीन्स पर ये था, दो घोड़े के बीच में उसकी पैंट रखी हुई है और दोनों घोड़े भाग रहे हैं दो दिशा में, और तो भी ये ट्राउजर्स वैसे की वैसी है। तो बहुत ही जगत ऐसे ही होता है, जो लगता है वैसे इसमें पैसा नहीं होता। खैर बात ये अलग है कि सोने को सोना बनाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा हु हैज फुल फ्रीडम, वी ऑल्सो हैव फुल फ्रीडम। अब आप सब सोच रहे हैं कि इसमें कुछ तो एक खोट है इसमें, आई डोंट हैव फुल फ्रीडम, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी सारी क्रियाओं पर कोई ना कोई तो रोकथाम करता ही है। आगे प्रभुपाद इसको क्लैरिफाई करते हैं, ऑल्दो द क्वांटिटी ऑफ दैट फ्रीडम इज क्वाइट माइन्यूट, हमारी जो फ्रीडम की क्वांटिटी है वो बहुत छोटी है। जैसे एक चम्मच और एक 10 टन का एक टैंक, 10 टन पानी रह सकता है इतनी बड़ी टंकी। एक चम्मच भी समुद्र के पानी से भर सकता है और एक टंकी भी समुद्र के पानी से भर सकती है। समुद्र में इसका कोई अंतर आने वाला नहीं है, समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कोई पूछेगा ये चम्मच कैसा है, बोले फुल, ये टंकी कैसी है, दोनों फुल, लेकिन दोनों के पानी में कितना अंतर है। चम्मच भले फुल हो गया तो उसमें तो कितना इतना सा पानी रहता है उसमें। तो वैसे ही श्री कृष्ण अनलिमिटेड है तो उनका फ्रीडम भी अनलिमिटेड है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, हमारा भी फ्रीडम फुल है, हमारा भी हमारा स्वातंत्र्य पूर्ण है, लेकिन हम छोटे हैं इसलिए छोटी मात्रा में उसको पूर्ण समझा जाता है। और ये छोटी मात्रा में क्योंकि पूर्ण है, वो हम छोटे हैं इसलिए माया हमको पकड़ सकती है, और क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है इसलिए वही माया उनको नहीं पकड़ सकती। इतना सिंपल लॉजिक है ये। तो आगे श्री प्रभुपाद बताते हैं, वॉट एवर वी हैव इन माइन्यूट क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन फुलनेस इन कृष्णा, जो हमारे में है छोटी छोटी मात्रा में वो भगवान में पूर्ण अवस्था में है। एक व्यक्ति ने एक बार प्रभुपाद से कहा कि आध्यात्मिक जीवन बड़ा अच्छा है, इससे क्रोध नहीं आता। और प्रभुपाद ने कहा क्यों, क्रोध में क्या प्रॉब्लम है? वो बोला अरे मैं तो सुना कि आध्यात्मिक जीवन करने वाले लोग कभी गर्म नहीं होते, गुस्सा नहीं होते। प्रभुपाद ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोला ऐसा नहीं है, इससे गुस्सा कम नहीं होता। बोला कम ज्यादा के पीछे हम पड़े नहीं है, भक्त ये सोचता है आज इस वक्त श्री कृष्ण किस प्रकार से मुझे सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं। अर्जुन को कुछ क्रोध नहीं था, क्रोध क्या, वो तो रो रहा था कि नहीं मारता इन लोगों को, मैं ऐसे ही छोड़ जाता हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो युद्ध बंद हो जाएगा, लोग समझते हैं कि सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है। तो भगवान ने कहा नहीं 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 युद्ध करो। अर्जुन को क्रोध नहीं हो रहा है तो उसको क्रोध दिलाया भगवान ने एक दृष्टि से। हनुमान जी को तब क्रोध आ गया जब रावण उनको बहुत भला बुरा कहा कि तू वानर है और मैं तो वानरों के साथ युद्ध क्या, उनके साथ बात करना भी डिग्निटी कम समझता हूं, मेरी डिग्निटी कम हो जाएगी उसमें, और तेरा स्वामी क्या है, वो भिक्षुक जैसा घूम रहा है वन वन में। ये सुनी बात हनुमान जी ने तो इतना क्रोध आ गया कि रावण की लंका जला दी पूरी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मत समझो कि वैष्णव यानी केवल एक कोने में बैठकर सारी जनता मुझे कुछ भी करे, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई मुझे लात मारे, चाहे कोई गाली दे, नहीं। क्रोध भक्त द्वेषी जने, हमारा क्रोध जो है वो भक्तों का द्वेष करने वाले लोगों से किया जाता है। एक छोटी सी घटना है, एक कीर्तन पार्टी कनाडा में कीर्तन कर रहे थे और जगदीश प्रभु, शायद आप लोगों में से सुना होगा, वो दामोदर अष्टक अच्छा गाते हैं और उनका रिकॉर्डिंग काफ़ी चला था। वो एकदम माइल्ड आदमी है, एकदम कभी उनका वो बोलते हैं तो भी इतने एकदम मृदु स्वर में बोलते हैं। तो एक भक्त आए थे रोहित प्रभु, वो बता रहे थे कि एक बार हम लोग कीर्तन कर रहे हैं तो एक शराबी, पूरा पिया हुआ नहीं था, नहीं तो वो तो उठेगा भी नहीं, लेकिन जब ये बीच वाली स्टेट होती है ना कुछ, हम इस कोने में गए तो हमारे पीछे आ गया, यहाँ से हम वहाँ गए वहाँ पीछे आ गया। फिर पहले तो ऐसे कुछ जोर जोर से आवाज़ कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि इनकी मत सुनो, ये सब शैतान के लोग हैं। यूरोप अमेरिका में खास करके भक्तों को ये गाली जाती है कि ये भगवान के लोग नहीं है, ये शैतान के लोग हैं। तो सब लोग इतने गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन उनके लीडर थे जगदीश प्रभु, उनके हाथ में बड़ी बड़ी वम्पर करताल थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, शांत रहो शांत रहो। फिर उनके पास अगर कुछ उनका मजाक करने लगा। बाद में उस ग्रुप में कुछ महिलाएं थी, माताजी थी, जब वो उनको परेशान करने लगा तो बोले मैंने अपने सामने देखा, ये प्रभु जी की आंखें ऐसे लाल लाल हो गई, उन्होंने कीर्तन बंद किया, वो करताल जो ऐसे हाथ में थी वो ऐसे कर दिया ऐसे, और ऐसे 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 घुमाकर एक दो तीन चार ढाम 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 उसके सर पे इतना मारा, वो खुद तिलमिला गया कि ये आदमी जिसको मैं आधे घंटे से परेशान कर रहा हूं, ये इतनी शक्ति कैसे आई उसमें, और चला गया वहां से। तो भक्त भी ऐसे नहीं है कि क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो मेरा अपना अपमान कितना भी हो लेकिन अगर दूसरों को अपमान कर रहा है तो भक्त सहन नहीं करता। तो इसलिए अगर भगवान भी वही चीज करते हैं जिसकी इच्छा मुझ में है, और ये दो पन्नों में खास करके श्रील प्रभुपाद नीतिमत्ता के ऊपर बहुत सिंपल तरह से समझाते हैं। भगवान कृष्ण माखन चोरी करते हैं, इस एक्सप्लेनेशन से प्रभुपाद बताते हैं क्यों नहीं, भगवान में चोरी करने की इच्छा क्यों नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे अरे ऐसे कैसे, भगवान तो भगवान है हमारे, वो तो हर चीज में आदर्श है उनका, उनका व्यवहार। और एक व्यक्ति को अगर पूछा जाए कि तू चोरी क्यों किया, क्या कारण मिलेगा आज की दुनिया में, कोई बोलेगा पता नहीं यहां से फूल लेना अलाउड था कि नहीं, गलती हो गई, पता नहीं बोल सकता। या कोई कहेगा कि बहुत भूख लगी थी, पैसे नहीं थे इसलिए मैंने ब्रेड ले लिया, मतलब मालूम है चोरी करना बुरा है लेकिन भूख ज्यादा हावी हो गई। तो अज्ञान, इग्नोरेंस या इम्पेशंस, उतावलापन। लेकिन बाद में कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं, एक तो मेडिकल डिजीज है क्लेप्टोमेनिया करके, मतलब उस व्यक्ति के पास पैसा है सब कुछ है लेकिन चोरी का माल अच्छा लगता है। मेरा एक मित्र था ऐसे ही, वो एक बार हम किसी ऑफिस में गए थे तो कोचिंग क्लास के ऑफिस में, तो उसने पैसे दिए और रसीद लाने के लिए वो व्यक्ति पीछे जाकर एक कबर्ड से कुछ लाने गया, तो उसने वहां से स्टेपलर ऐसे सीधा स्टेपलर मेरे सामने से लेके डाल दिया जेब में। तो मैंने कहा ये क्यों किया ऐसे, वो बोला ऐसे ही मैं ऐसे ही कुछ उठा लेता हूँ। मैंने कहा क्यों, नहीं ऐसे ही मजा आता है। मैंने कहा पकड़े जाओगे तो, बोला नहीं वो रिस्क है, वो थ्रिल है उसमें, ये रिस्क लेने में एक थ्रिल है। तो कई हायर मिडिल क्लास रिच क्लास की महिलाओं को शॉपिंग मॉल में जाकर कोई छोटी छोटी चीज, कोई इयररिंग होगा या कोई पर्स होगा या कोई कंघी होगी, तो ये उठाने की इच्छा हो जाती है। कई लोग चोरी करते हैं चारा नहीं की, बाद में 125 का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेते हैं कि ये कब जाएगी मेरी आदत। जो चोरी करते हैं वो सामान छोटा सा होता है, और एक साइकोलॉजिस्ट को हजारों डॉलर देते हैं, तो ये एक मेंटल डिजीज है। ये श्रील प्रभुपाद जी आज हमें समझा रहे हैं कि आप में चोरी करने की आदत है और भगवान में भी है। एक ग्रीक फिलोसोफर था एरिस्टोटल, उसने अपने लोगों को समझाया कि भगवान भगवान नहीं हो सकते जिनमें मानव के गुण दोष होने चाहिए। तो लोगों ने कहा हाँ बात सही है, वो भगवान भगवान नहीं हो सकता जिसमें मामूली गुण दोष हो सकते हैं। वैष्णव सिद्धांत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। क्या प्रॉब्लम है इसमें भगवान को अच्छा अच्छा समझने में? कई लोग हैं वो छोटे गोपाल जी की मूर्ति की पूजा करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो 16 वर्ष के या 15 वर्ष के कृष्ण है ना, वो थोड़ा वो गोपियों के साथ डांस वांस करते हैं और क्या क्या करते हैं, तो हमारे गुरुजी समझाते हैं कि वो सब मनगढ़ंत बातें हैं, वो सब कवियों ने और बाकी किसी मन से ही किसी ने बोल दिया ऐसे। कृष्ण ऐसा नहीं करने वाले, कृष्ण एकदम सिंपल प्योर हैं। तो इसलिए हमको बोला जाता है कि गोपाल कृष्ण जो है ना, अपना छोटे गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल, वो छोटे से बालक जैसे हैं, वो एकदम प्योर शुद्ध हैं। एक लेखक ने प्रभुपाद जी को समझाया था, प्रभुपाद ने कहा कि देखो अगर आपको बुद्धि नहीं है तो किसी से सीखो, लेकिन गलत सिद्धांत का प्रचार मत करना प्लीज, क्योंकि ये धारणा भी भौतिक है कि क्योंकि ये गुण ये अवगुण मुझ में है, चोरी करना एक अवगुण है, दोष है, और ये कहते हैं कि भगवान में भी वो है इच्छा, तो बोला ना ये ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हमारा सिद्धांत क्या है? भगवान में भी चोरी करने की इच्छा है, लेकिन वो शुद्ध इच्छा है। आइए थोड़ा इसको समझते हैं, भगवान किसकी चोरी करेंगे और क्या चोरी करेंगे? सब कुछ तो उनका ही है। क्या आप अपने घर से चोरी कर सकते हो? क्या आप व्यक्ति अपने ऊपर की जेब से पैसा चुरा कर नीचे की जेब में डाल सकता है? वो तो एक ही बात हो गई ना, यहां का पैसा वहां गया। तो भगवान कभी भी किसी चीज की चोरी नहीं कर सकते, सब कुछ उनका ही है, आम सर्वस्य प्रभवो। लेकिन ब्रजधाम में, केवल वृंदावन में नहीं जहां भगवान रहते थे, गोकुल महावन में नहीं, समस्त ब्रजधाम में जितने सारे गोपों के घर थे उस सब में जाकर भगवान ने दूध दही माखन की चोरी की। सब में भागवत में संक्षिप्त वर्णन आता है किसी एक या दो गोपियों के घर का। क्यों? क्योंकि हर एक गोपी मन ही मन में प्रार्थना करती थी कि ये हमारे घर आ जाए चोरी करने के लिए। अर्थात चोरी के बाद वो उलाहना देती थी, यशोदा माई को जाकर बोलती थी कि ये क्या है तुम्हारा लाला, पकड़ो इसे, समझाओ इसे। तो भगवान की चोरी से भी सारे भक्तों को आनंद मिलता था। हमको तो अपने घर में चोरी तो आनंद नहीं होता ना, दूसरों की चोरी से कभी आनंद होता होगा? लेकिन देखो सोचने की बात है, चोरों की कथा कितनी पॉपुलर है। एक तो एक अखबार निकलता है पुलिस टाइम्स कैसे कुछ, इसमें केवल चोरी डकैती की कथाएं होती है। आज अगर आप जाओगे और एक अखबार पढ़ा है नीचे, चोरों ने 12 लाख डॉलर बैंक से लूटे, तो हम बोलेंगे अरे पढ़ो पढ़ो देखो क्या है उसमें, कैसे गए वो अंदर, कितना रिस्क लिया, कैसे किया, क्या किया। क्यों? हमको इसमें दुख क्यों नहीं होता कि अरे बाप रे बैंक के पैसे गए? एक तो दुख इसलिए होता कि मेरे पैसे नहीं थे वो, लेकिन एक आकर्षण है चोरों का, जो कार्यकलाप है उसके प्रति एक डीप सीटेड नीचे अंदर एक आकर्षण है कि कैसे करते हैं यार ये लोग, बड़े आश्चर्य की बात है। तो उनको हम वीर समझते हैं, ऐसे कोई बहुत कोई विद्वान है जिसने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उसके अनुसार चोरों को भी प्रसिद्धि मिलती है। तो क्योंकि ये जो चोरों की प्रशंसा करने की इच्छा है या जो धारणा है ना, वो भी भगवान के चोरी की प्रशंसा करने का एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। भगवान माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध हैं, सर्वश्रुत हैं, और इसलिए यहाँ बोधि जगत में भी चोर, भले उस समय उनको फांसी लगती होगी लेकिन मरने के बाद तो बहुत फेमस हो जाते हैं वो। जैसे एक बड़ी नॉवेल थी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, एक ट्रेन से बैंक की कैश जा रही थी और चोरों ने वो गाड़ी को रोक कर सारी कैश चुरा ली। जिस स्पॉट पे चोरी हो गई वहां पे आज एक मॉन्यूमेंट है, एक स्मारक है। जिस बोगी से चोरी हो गई उसको भी म्यूजियम में रखा गया है कि ये था, ये बोगी थी जहां से चोरों ने चोरी की है, और लोग टिकट लेकर पैसा देकर देखने आते हैं। अच्छा सोच लीजिए, आकर्षण है इसमें। लेकिन ये वो ओरिजिनल माखन चोर है, उसकी स्तुति का ये भ्रष्ट पतित उसका एक रिफ्लेक्शन है। श्री प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स कभी कभी बहुत सिंपल होते हैं लेकिन वो बहुत चकराने वाले होते हैं। एनी एक्टिविटीज दैट आर स्पिरिचुअल आर गुड, ऑल गुड। एनी एक्टिविटीज दैट आर मटेरियल आर ऑल बैड। खास करके आजकल जो लोग अपने आप को मॉरलिस्ट या थियोलॉजी समझते हैं वो ऐसे ऑल गुड ऑल बैड से बहुत दूर रहते हैं कि ये आप मत समझाना हमको ऑल गुड, कृष्णा इज ऑल गुड, ऑल गुड। थोड़ा तो कुछ होगा यार दोष, कुछ थोड़ा सा कुछ होगा, बोलो ना ऑल गुड। हमारा दसवा स्कंद जो है, हर एक स्कंद के नीचे एक प्रभुपाद ने पहले, उसके बाद बीबीटी के पब्लिशर्स ने एक ये दिया है कैप्शन, जैसे स्टेटस को क्रिएटिव इम्पिटस, टेंथ कैंटो का ये दिया है सम्मम बोनम, लैटिन शब्द है ये सम्मम, एस यू एम एम यू एम, बोनम बी ओ एन यू एम। सम्मम का मतलब है टोटल, जैसे मैथमेटिक्स में होते ना सम एडिशन सम, तो सम्मम का मतलब है सम ऑफ एवरीथिंग, और बोनम का मतलब है गुड, मतलब बोनाफाइड बोलते ना गुड, ऑल टोटैलिटी गुड। तो यही बात के ऊपर तो कई लोगों के जीवन में जो पहला जो अड़सर है या अवरोध है उसको ही वो आगे नहीं जा सकते। हाउ कैन वन पर्सन बी ऑल गुड। पारसी समाज में उनका जो धर्म कहता है कि एक भगवान है और एक शैतान है और दोनों आपके जीवन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब भगवान इंटरफेयर करते हैं तब अच्छा होता है, आपका नौकरी मिली, शादी हो गई, बच्चे हो गए, प्रमोशन मिला, लॉटरी लग गई, सेहत अच्छी है, भगवान का मीटर चालू है। एक्सीडेंट हो गया, डिवोर्स हो गया, बीमारी लग गई, फेल हो गए, नौकरी चली गई, धंधा डूब गया, तो समझने का शैतान काम कर रहा है। तो ये कन्वीनियंस का रिलीजन है ये, मतलब भगवान को क्यों दोष देना कि वो क्यों आपका बुरा करेगा, है कि नहीं, भगवान बुरा नहीं करेंगे। तो लोग समझाते हैं अगर कुछ खराब हो गया तो भगवान के पास मत जाओ, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, ये शैतान को संतुष्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, या तो कभी कभी रुकना पड़ेगा कि भगवान कब उसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे। जैसे दोनों अच्छे ये होते हैं ना, अच्छी टीम्स, चाहे क्रिकेट की हो या टेनिस की हो, टेनिस में खास करके दोनों प्लेयर बहुत अच्छे हैं, तो पहला एक ने जीता सेट 6-4, फिर दूसरा इसने जीता 4-6, फिर इसने तीसरा जीता 7-5, फिर इसने फिर जीता 5-7, अभी जो पांचवा है वो टाई ब्रेकर है, ये जो जीतेगा वो पूरा मैच जीत लिया। तो लोग सब ऐसे दांत उंगली चबाते देखते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो लोग समझते हैं कि जीवन भी हमारा ऐसा ही है, भगवान और शैतान उधर आपस में जूझ रहे हैं, उधर आपके लिए, आप पर्सनल आपके जीवन के लिए। वो सेट शैतान ने जीता, आप खलास, कुछ नहीं कर सकते। तो वेदांत कहता है कि ना ऐसा भी नहीं होता। शैतान को बनाया किसने? वो बोले वो एक ऐसे ही बन गया, वो भगवान ने देखा कि एक दिन अचानक शैतान आ गया, एक कोई प्रॉब्लम शुरू हो गया इधर से ही। अगर भगवान सब कुछ उनसे आता है, अहम सर्वस्य प्रभवो, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, तो एक इंडिपेंडेंट पावर और कहां से आ गई? या तो कहो कि ये दोनों को किसी और ने बनाया, फिर वो भगवान हो गया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता अगर बोलेंगे कि नहीं नहीं शैतान एक अलग चीज कोई। भयम विद्याभिनिवेश तस्याद ईशाद अपेतस्य विपर्ययो अस्मृति। भय तभी शुरू होता है जब हम सोचते हैं कि कृष्ण से अलावा कोई और एक इंडिपेंडेंट ईश्वर है, एक स्वतंत्र पावर है, एक स्वतंत्र शक्ति है जो भगवान को पूछे बिना, कृष्ण की परमिशन के बिना कुछ भी कर सकती है। इससे डर पैदा होता है, डर। एक सुंदर उदाहरण है, मामूली तरह से हम सोचते हैं कि पुलिस के पास बंदूक है, ऑटोमेटिक राइफल है, पुलिस के पास मॉरल पावर है, शक्ति है कि चोर आ गया, डकैती हो गई, कोई आपको मार रहा है, धमकी दे रहा है, फोन पे किडनैपिंग की धमकी दे रहा है, तो आप कहेंगे पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। एक दिन सुबह सुबह आपने पता चला, पेपर में आया है, बॉम्बे पुलिस ऑन स्ट्राइक। पुलिस ही है नहीं ऑफिस में या उनके पुलिस स्टेशन में, और तब आपको किसी ने धमकाया, तो बोलेंगे अभी किसके पास जाए, अब तो डर हो गया ना। पहले एक पावर थी कोई, एक शक्ति थी, अभी जो अंडरवर्ल्ड है वो एक इंडिपेंडेंट पावर बन गई। हालांकि कभी कभी ऐसे होता है, कलयुग है, आपको याद होगा, मुझे तो याद है, मैं स्कूल में था तभी बॉम्बे पुलिस स्ट्राइक पे गई थी वास्तविक, एक दिन भर, एक दिन कम से कम। बात ऐसी हो गई कि उस समय ना तो कोई चोरी हो गई ना कुछ हो गया, सादा पिक पॉकेट भी किसका नहीं हो गया, क्यों पूछो? लोगों ने सोचा, वो चोर लोगों ने सोचा, आज अगर पकड़े जाएंगे तो पब्लिक है और हम है, हमको बचाने वाला कोई नहीं है, तो पुलिस, पूरी पुलिस फोर्स घर में बैठी है और पूरा मुंबई शांत। तो कलयुग में कभी कभी विपरीत हो सकता है, लेकिन सिद्धांत की बात ऐसी है कि कृष्ण के अलावा और कोई शक्ति प्रदान करने वाला नहीं हो सकता। तो फिर भी जीवन में समस्याएं आती है, जैसे इसके पहले के श्लोक में हमने देखा था, विपदा, बहुत सारे संकट आते हैं, तो भक्तों को क्या सोचना चाहिए? मेरे जीवन में जो संकट है, मेरे अपने पर्सनल लाइफ में जो संकट है, क्या ये भगवान ने पर्सनली प्रोग्राम किए हैं कि अब इसको मैं बीमार गिराता हूं, अब इसका मैं विवाह में कुछ संकट डालता हूं, अब इसको मैं पैसे से, इसके पैसे चुरा लेता हूं? भगवान ने देखे, अर्जुन उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। ये मत सोचना कि हरेक व्यक्ति के जीवन में मैं पर्सनली इन्वॉल्व होकर इसको अभी गिराऊं, इसको अभी ऊपर, मुझे क्या मिलेगा आपको गिराने से? मुझमें कोई विकार नहीं आता। कोई आदमी आपको शुभ समाचार देगा, जैसे राजा को कोई शुभ समाचार देता, महाराज महारानी को पुत्र प्राप्ति हो गई है, तो महाराज तुरंत एक मोती का हार डालकर, आइए अच्छी खबर सुनाई आपने, इसको बोलते हैं विकार, ट्रांसफॉर्मेशन। महाराज युद्ध में पुत्र मारा गया, बोलते इसको फांसी दो, बोल रहे मैंने क्या किया, मेरा काम था खाली समाचार देने का। लेकिन पहले ऐसे होता था, इसलिए इंग्लिश में कहावत आ गई है, डोंट शूट द मैसेंजर। जो मैसेंजर है केवल संदेश देने वाला, उसको मत शूट करो। लेकिन कभी कभी लोगों की जान गई है, खास करके युद्ध में अगर उसका पराभव हो गया है तो राजा जरूर उस संदेशवाहक को मारता था, तो उनका जीवन बड़ा रिस्की था। अच्छी खबर सुनाओ तो बहुत पैसा मिलता था, बुरी सुनाओ तो मरना पड़ता था। तो हमारे जीवन की समस्याएं किसने बनाई है फिर? वेदांत, खास करके वैष्णव वेदांत, भक्ति वेदांत हमको ये सक्षम करता है कि मैं जो भी जीवन में अनुभव कर रहा हूं, मेरा अपना है, ये सब कुछ मेरा अपना है, सुख दुख सब कुछ मेरा अपना है। तो हम कहेंगे फिर सुख से तो हम विकार होता है, हमें सुखी घटना से हम उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, दुखी घटना से उससे दूर रहने की मन में सोचते हैं। कोई भी हो गया संसार में क्लेश, ऑफिस में प्रॉब्लम, कोई संकट, सोचते रहते हैं उसी व्यक्ति के बारे में लेकिन घृणा से, सोचते रहते हैं उसी व्यक्ति के बारे में प्रेम से, आसक्ति तो है दोनों में। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझ में ये विकार नहीं होते, चाहे कुछ भी हो। तो आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोरालिटी, नीतिमत्ता। कौन नीति बना सकता है और कौन नीति के नियम डाल सकता है? श्रील प्रभुपाद जी खास करके उसमें भगवान कृष्ण की रासलीला और चैतन्य महाप्रभु के उसका कनेक्शन जोड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने जो रासलीला की, सारे नियमों को तोड़कर, एक तो 5000 वर्ष पूर्व का समाज, दो कथा में बताना चाहूंगा। इसमें भीष्म देव ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए स्वयंवर जाने की इच्छा की। तीन बहनें थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। संस्कृत भाषा भी बड़ी मनोरम है। अंबा और अंबिका मतलब है छोटी अंबा, तो मतलब वास्तविक का मतलब हो गया अंबा, छोटी अंबा और छोटी छोटी अंबा, अंबा, अंबिका, अंबालिका। जैसे हमारे में भी नाम रहने की प्रघात एक प्रथा है ना, छोटू बोलते किसी को, छोटा, तो ये छोटी, ये बड़ी छोटी और छोटी छोटी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो भीष्म देव लगभग 400 वर्ष जिए, वो तो इच्छा मरणी थे, उनको तो इच्छा से ही मृत्यु होने वाली थी और काफी बूढ़े थे, और शक्ति ऐसी कि एक सारी सेना को परास्त करे। अपने गुरु को परास्त किया लगभग उन्होंने, गुरु उनको परास्त नहीं कर पाए। तो लोगों ने सोचा ये बूढ़ा क्या कर रहा है इधर, इसने तो कसम खाई है, व्रत लिया है कि मैं कभी युद्ध विवाह नहीं करूंगा। और उन्होंने सारे नौजवान राजपूतों से कहा किसकी हिम्मत है मेरे सामने आने की, तो उनको देखकर कई लोग भाग गए। कई लोगों ने युद्ध करने की इच्छा की लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र अंग भंग और सब कुछ तोड़ दिया उन्होंने, और तीनों को लेके आ गए। उसमें से एक अंबा, अंबा, बाकी दोनों ने मान्य किया। अंबा ने कहा महाराज आप हमको जीत कर आए हैं, आप हमसे विवाह करेंगे क्या? बोला नहीं, मैं अपने लिए नहीं लाया हूं, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन में जो राजपुत्र बैठे उनके लिए लाया हूं, विचित्र वीर्य के लिए। तो मेरी एक बात सुनिए आप, पहले ही मेरा मन एक अन्य राजकुमार के ऊपर गया है। तो बोले अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया फिर? बोले आपने पूछा किधर, तो बोले कोई बात नहीं आप जाओ। बोला मैं जाऊं? आप मुझे उठा के लेके गए, सारे समाज ने देखा है। बोला आपको कोई आपत्ति नहीं है ना, आपकी इच्छा है कि उसके साथ विवाह करो तो करो। तो वो गई, तो राजपुत्र ने कहा कि मैं थोड़ी किसी की दी हुई ऐसी भीख को स्वीकार करूंगा। सबके सामने वो भीष्म आपको लेके गया, जाओ वापस, मुझे आपके में कोई रुचि नहीं है। तो बहुत उसको सदमा पहुंचा। अंबा फिर आ गई और बोली आप मुझे स्वीकार करो। बोला अरे फिर आ गए आप? बोले वो मुझे स्वीकार नहीं करते। तो फिर मैं क्या करूं, आप इनसे विवाह कर लो। बोला नहीं, अब आप मुझसे विवाह करो, क्योंकि सब समाज ने देखा है आप मेरा अपहरण कर रहे थे। मतलब समाज उस समय इतना स्ट्रिक्ट था कि कोई पुरुष अगर किसी स्त्री को पकड़ कर लेके जा रहा है, भले हाथ से भी नहीं हो फोर्सफुली, तो भी उस स्त्री का पूरा उसका निर्वहन करना उस पुरुष का कर्तव्य था। समाज इतना स्ट्रिक्ट था। ऐसे समाज की अवस्था में भगवान ने विवाहिता गोपियों को अपने घर से बुलाया, केवल अपनी बांसुरी सुनाकर वो सब छोड़ छाड़ के आ गई। इट वॉज ए बिग रिस्क, बिग क्या, बिगेस्ट रिस्क। फिर जरासंध ने जो 20,000 के आसपास राजाओं को बंदी बना के रखा था, वो राजकन्याएं भी, पिता अगर बंदी है तो राजकन्या को क्या स्वतंत्रता है, तो उनको भी बंदी बनाया गया था। और वो कथा आती है कि कैसे वो दूत आके द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना करते हैं कृपया हमको बचाइए, तो भगवान जरासंध को परास्त करके सारे राजाओं को मुक्त करते हैं। फिर उनकी कन्याएं कहती हैं कि अब हमें कौन स्वीकारेगा, बोले क्यों, अभी कंस तो मर गया है, जरासंध भी मर गया है, आप जाकर जिसको चाहे जिसके साथ विवाह कर लो। बोले नहीं, अब हमें कोई नहीं स्वीकारेगा। तो भगवान ने कहा फिर मैं कैसे आपकी सहायता करूं, बोले आप ही हमें स्वीकृत कीजिए। बोले ठीक है, अब आज तो नहीं लेकिन पहले भी कोई राजा होता था, 20,000 लोग कहेंगे कि अगर 16,000 राजकन्याएं कहेगी हमसे शादी करो तो ये कोई मामूली बात नहीं है ना, भले पैसा है किसके पास लेकिन हां कैसे कहें कि 16,000 पत्नियां। तो लोग हमेशा ये आक्षेप करते हैं भगवान के ऊपर, ये आरोप करते हैं कि कुछ तो मोरालिटी होनी चाहिए, 1-2 करो ठीक है लेकिन 16,000 क्या बात है। तो ये 1 या 2 या 16,000 प्रभुपाद कहते हैं 16 लाख, 16 करोड़ या 16 अरब की भी बात नहीं है। इवन इफ कृष्णा एक्सेप्ट 16 बिलियन वाइव्स, दैट इज नॉट द फुल एक्सटेंट ऑफ हिज पावर। उसमें भी भगवान की शक्ति पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आज 6.5 बिलियन पीपल है ना हम लोग, मनुष्य समाज कितना है, 6 अरब। लेकिन मनुष्य तो 6 अरब है लेकिन कीट कितने हैं? केवल इंडिया में मनुष्य के 20 गुना तो चूहों का पॉपुलेशन है, ऐसा एक अंदाज है, सोच लीजिए 6 × 20 मतलब 120 अरब तो चूहे हैं इंडिया में केवल, और छोटे छोटे कीड़े बीड़े तो कितने होंगे। हरेक के हृदय में एक परमात्मा है, भगवान ने अपना एक्सपेंशन प्रकाश पहले से ही कर दिया है, सबके हृदय में वास कर रहे हैं वो। तो जिन्होंने इतना अपना एक्सपेंशन कर दिया है वो क्या 16 सहस्र नहीं कर सकते अपना एक्सपेंशन, कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने अपने एक्सपेंशन प्रकाश करके सबके साथ वो प्रेम से रह रहे थे। एक नवाब थे लखनऊ के, उनकी 200 बेगमें थी, 200 बेगम, लेकिन बड़े परेशान होते थे क्योंकि एक तो ये बेगम में झगड़ा और ऊपर से आज किसके पास जाएं, किसको क्या संतुष्ट करें, किसी ने अगर लाल कपड़ा मांगा तो नीला दे दिया तो और गुस्सा हो गई। तो भगवान के साथ ये प्रॉब्लम नहीं था कि सुबह उठकर उनका सेक्रेटरी बताएगा आज वाइफ नंबर 4552 तो उधर गए, नो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही विवाह हो गया वैसे भगवान के एक एक रूप हो गए, 16,000 महल बन गए, राज प्रासाद, उस सब में वो रानियां एकदम संतुष्ट थी। 16,000 श्री कृष्ण सुबह सुबह अपने ड्यूटी जाने के लिए आते थे बाहर, रथ एक ही था, रथ 16,000 नहीं थे, सारथी एक ही था, और ये 16,000 एक होते थे रथ पे बैठकर, दिन भर कामकाज किया जो भी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ है वो। और जैसे ही रथ वापस आ गया 16,000 कृष्ण अपने अपने घर में जा रहे। योगी 50 गुना अपना एक्सपेंशन कर सकता है, एक योगी के 50 बन सकते हैं, एक के 50। लेकिन वो कैसे होता है, जैसे आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में 25 टीवी रखे हैं और 25 टीवी में कोई गाना गा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, तो ऐसा नहीं ना कि सितार का हाथ अभी इधर है तो इधर इधर है, 50 के 50 टीवी में ऐसे ऐसे ऊपर ही हो रहा है, एक ही आदमी है ना, केवल 50 स्क्रीन में उसका टेलीकास्ट देख रहे हैं हम। कृष्ण का ऐसे नहीं था, नारद मुनि एक घर में गए तो भगवान चेस खेल रहे हैं अपने किसी रानी के साथ, एक घर में गए तो अपनी पुत्री के विवाह की बात चल रही है, दूसरे घर में गए तो पुत्र के विवाह की बात चल रही है, एक घर में गए तो शत्रु के साथ संधि की बात चल रही है, एक घर में गए तो स्विमिंग कर रहे हैं, एक जगह पे तो भोजन ले रहे हैं। और सब महल में आने के बाद नारद मुनि के पास जाकर देवर्षि धन्यवाद प्रणाम आइए, तो बोले अभी 2 मिनट पहले तो ऐसे किया था अभी भी वही कर रहे हैं। नारद मुनि जब चकरा जाते हैं, इट्स नॉट इजी टू सरप्राइज नारद मुनि, नारद मुनि को आश्चर्य करना मतलब बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए वो चैप्टर आया है कृष्णा बुक में, लॉर्ड कृष्णा डेली एक्टिविटीज करके कुछ बताया उसमें। तो श्री कृष्ण जो है उनकी मॉरलिटी, मतलब अभी तक तो उसकी मॉरलिटी है ही नहीं, हम कहेंगे ये कुछ भी कर रहे हैं। जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वही गोपियां, वही मंजरी सखियां, वो सब पुरुष देह में आती है, रूप गोस्वामी, रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी, रति मंजरी। तो ये सब अलग अलग जो मंजरियां आती है, गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी, और वही रासलीला श्रीवास अंगन में जो होती है वो नाम कीर्तन होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी बताते चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पत्नी के साथ तक कभी विनोद नहीं किया, वही कृष्ण है लेकिन कितने सीरियस हो गए। देखो एक बार सची माता कह रही है कि कोई सामान नजर नहीं आ रहा है, कहां पता नहीं कहां रखा कहां रखा। तो महाप्रभु ने कहा शायद आपकी क्या कहते हैं डॉटर इन लॉ को, आपकी बहू ने शायद लिया होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं पूरे लाइफ में ये इतना ही एक जोक था, डोमेस्टिक जोक जो हो गया वो इतना खाली, नहीं तो महाप्रभु वॉज वेरी सीरियस। तो भगवान इस तरह से एकदम जोकिंग लालित्य दिखा सकते हैं और एकदम सीरियस बन सकते हैं, लीला की सीमा दिखा सकते हैं, मर्यादा की सीमा दिखा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। तो नीतिमत्ता मोरालिटी, प्रभुपाद बताते हैं हमारे यहां के ट्रैफिक का नियम है कीप लेफ्ट, लेफ्ट से आगे जाइए, राइट से ट्रैफिक आपकी तरफ आएगा। अमेरिका में उल्टा है, कीप राइट, राइट से आगे जाइए, लेफ्ट से ट्रैफिक सामने आएगा। लेकिन प्रॉब्लम उसमें कुछ नहीं है, दोनों नियम अगर फॉलो करिए दोनों के देशों के लोगों ने तो ट्रैफिक ठीक से जाएगा। कोई अमेरिकन लाइसेंस लेके इंडिया में आएगा और राइट से आगे जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा पक्का। तो नीतिमत्ता में भी कभी कभी चढ़ उतार आ सकता है। जैसे पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी अविवाहिता युवती रात को अकेले बाहर नहीं जाएगी, अभी कलयुग आ गया है, तो कई चीजों को आचार्यों ने कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन उन्होंने किया है हम नहीं कर सकते। जैसे प्रभुपाद बताते हैं एक बार एक भक्त ने कहा कि ये कृष्णा कॉन्शियस अच्छी फिलोसॉफी है लेकिन नियम बहुत स्ट्रिक्ट है। प्रभुपाद ने कहा आई एम 90% लीनियंट, मैंने 90% रूल तो आपको बताया नहीं है, सुनोगे तो बेहोश हो जाओगे आप। प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्मार्तों के जो नियम है अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बाथरूम से बाहर निकलने को समय नहीं मिलेगा, इतना स्नान करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ हो गया स्नान करो, थोड़ा कुछ कह दिया स्नान करो, थोड़ा कुछ हो गया स्नान करो। एक एक न्यूज़पेपर था जिसमें प्रभुपाद के बारे में आया था स्वामी हु इज वेरी कंजर्वेटिव, तो प्रभुपाद ने कहा कंजर्वेटिव, मैं कंजर्वेटिव? तो उसने कहा एक भक्त ने फिर थोड़ा सा शाब्दिक छल किया, बोला अब कंजर्वेटिव मतलब नियमों के पालन करने में आप बड़े स्ट्रिक्ट हैं। बोला हाँ वो ठीक है, नहीं तो मैं आई एम 90% लिबरल, मेरे 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 गुरुजी के नियम इतने कड़क थे। भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर कहते थे कि इफ यू डोंट चैंट 64 राउंड्स यू आर फॉलन। तो प्रभुपाद कहते कि इनके हिसाब से हम सब फॉलन तो है ही, हम सब पतित हैं। और कई परपोर्ट्स में प्रभुपाद बताते हैं क्यों मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूं। एक सन्यासी को भी विवाह नहीं करना चाहिए, लगाना चाहिए किसी का विवाह, मैं लगाता हूं। बोले क्योंकि इनका कोई आश्रय नहीं था, अगर मैं एक अच्छा गृहस्थ आश्रम स्वयं बनाकर न बताऊं तो फिर क्या होगा। तो इसलिए एक आचार्य अगर कोई चीजों में एडजस्टमेंट करने का अधिकार वो है तो केवल भगवान को है और उनके प्रिय भक्तों का है या आचार्यों का है। मामूली साधना भक्त, साधना करने वाला कभी भी मोरालिटी में चेंजेस नहीं ला सकते, हम कभी किसी भी इसमें चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये हॉस्पिटल का कंप्यूटर सिस्टम है, क्या कोई भी आगे कर सकता है कि ये चेंज करो, इधर एंटर दबाओ, एस्केप दबाओ, तो पूरा टूट जाएगा। जो ऑथोराइज पर्सनल जो व्यक्ति है वही इसमें चेंजेस कर सकता है। ये पॉइंट थोड़ा लंबा है तो इसकी आगे चर्चा उर्वरित अगले बार करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।